Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Krishna Yajurvediya. श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रसंग है, पांचवें अध्याय में ग्यारहवें मंत्र की व्याख्या है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहेर ग्रासाम दृष्ट्या चात्म विवृत्ति जन्मा परमानुगान्यनुक्रमेण देही स्थाने स्वरूपान्यभि संप्रपद्यते स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्विणोति क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषाम् संयोग हेतुरपरोपि दृष्टः अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपासहि भावग्राह्यमनिद्याख्यम् भावाभावकरम् शिवम् कलासर्गकरम् देवम् एभिदुस्ते जहुस्तनु। श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रसंग है। जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है कि कैसा है जीवात्मा, कर्ता क्या है। बता रहे थे अंगुष्ठ मात्र परिमाण का है स्थूल शरीर में। आराग्र परिमाण का है सूक्ष्म शरीर में और अत्यधिक सूक्ष्म है बालाग्र शतभागस्य सतता कल्पितस्य च। बाल के जो अग्रभाग उसके 100 चीरे करो कितना पतला होगा, उसके भी पुनः 100 चीरा करो तो वो कितना परिमाण का होगा, उसके अंदर ये जीवात्मा संचरण करता है तो वो कितना सूक्ष्म होगा। अलग अलग उपाधियों में ये अलग अलग प्रतीत होता है। ये बताया और इसी तरह ये कहा कि इतना आप समझ लेना, जीवात्मा किसी लिंग से चिन्हित नहीं है। जितने भी चिन्ह हैं लिंगों के वह तो स्थूल शरीर का है, आत्मा का नहीं है। स्थूल शरीर के लिंग, स्थूल शरीर के चिन्ह सूक्ष्म शरीर में ही नहीं है तो आत्मा में होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अभी तक आप अपने को स्त्री मानते हो तो ये भ्रांति छोड़ देना। आप अभी तक पुरुष मानते हो तो ये भी भ्रांति छोड़ देना। अभी तक नपुंस मानते हो तो वो भी भ्रांति छोड़ देना। स्त्री पुरुष और नपुंसक तो ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होने वाले चिन्ह हैं, लिंग हैं। आत्मा के स्वरूप में कोई लिंग नहीं है, अलिंग है वो, जीवात्मा ही अलिंग है। सामान्यतया हम लोग परिभाषा करते हैं, संतति प्रजनन का जो लिंग है साधन है उसको पुलिंग या स्त्रीलिंग कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि नपुंसक में वह लिंग नहीं है, वह इंद्रिय नहीं है, उपस्थ इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं समझना। इंद्रियों की अपनी कोई आकार नहीं होती है, आकार तो सभी स्थूल शरीर के हैं, इंद्रियों के नहीं है। धृतराष्ट्र जन्मांध था, इसका मतलब ये नहीं समझना कि धृतराष्ट्र के चक्षुर इंद्रिय नहीं थे। चक्षु गोलक नहीं था लेकिन चक्षुर इंद्रिय थे। नपुंसकों में उपस्थ इंद्रिय रहता है लेकिन उपस्थ गोलक नहीं रहता। गोलक अलग चीज है, इंद्रिय अलग चीज है, ये बात आपको निश्चय करना चाहिए। यज्जत शरीरमादत्ते तेन तेन संरक्षते, ये जीवात्मा अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, जैसा जैसा उसको शरीर मिलता जलता है, उन उन शरीरों से वह रक्षित होता है। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि स्थूल शरीर की रक्षा जीवात्मा करता है और जीवात्मा की रक्षा स्थूल शरीर करती है, ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर का होना न होना तो जीवात्मा पर निर्भर है। जीवात्मा इस शरीर के अंदर जब तक रहेगा स्थूल शरीर रहता रहेगा। जीवात्मा जैसे इससे निकल जाएगा उससे ही स्थूल शरीर नष्ट होने लग जाएगा। सामान्य परिभाषा, सामान्य दृष्टि, सामान्य लौकिक तो यह दिख रहा है कि स्थूल शरीर की रक्षा जीवात्मा करता है, लेकिन उपनिषद की श्रुति यह कह रही है कि स्थूल शरीर जीवात्मा की रक्षा करता है। जीवात्मा की रक्षा करता है इसका अर्थ यह है, स्थूल शरीर को वायु की तरह चंचल, और स्थूल शरीर जीवात्मा को वायु की तरह चंचल अस्थिर होकर भटकते रहने से वह रक्षा करता है। इसका मतलब यह है आपके प्रारब्ध और वासना और कर्म फल भोगना है, इस शरीर में 80 वर्ष तक इस शरीर में रहना है, इस शरीर से निकलने के बाद फिर आप वायुमय और आतिवायिक शरीर से न जाने कहां कहां घूमोगे। प्रारब्ध का निर्धारण है 80 साल ये शरीर टिकना है, तो 80 साल तक तुम्हें इस शरीर के अंदर रहना पड़ेगा। तो 80 साल तक तुम्हें सुरक्षित इस शरीर के अंदर रखने वाला कौन है, तो यही शरीर है, भटकने नहीं देगा, घूमने नहीं देगा वायु की तरह। यही शरीर के द्वारा आत्मा की रक्षा का प्रसंग है। और आगे बता रहे हैं कि इस जीवात्मा को पुनर्जन्म होता है। यज्जत शरीरमा सद्य, इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा को एक के अलावा अनेक शरीर प्राप्त होता है। शुरू से अभी तक वह एक ही शरीर में नहीं है, एक ही प्रकार के शरीर में नहीं है। सृष्टि के आदि में जब जीवात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हुई है, तब से लेकर आज तक, ये जीवात्मा कोई दूसरी जीवात्मा की बात कर रहे हो स्वामी जी, ऐसा नहीं करना, तुम्हारी बात कर रहे हैं तुम। जब अपने को कर्ता भोक्ता जीवात्मा मानते हो, ये तुम्हारी बात है, कोई तुमसे भिन्न किसी और की इतिहास बता रहे हो ये बात नहीं समझना। ये मंत्र हमारे बारे में चर्चा कर रही है, ये सोच लो, ये निश्चय कर लो। सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार तुम्हारा अस्तित्व रहा जीव के रूप में, तब से लेकर आज तक न एक ही शरीर है, न एक ही प्रकार का शरीर है। शरीर अनेक हुए हैं, वो भी एक ही प्रकार का शरीर अनेक हुए हैं, ऐसा नहीं समझना। मनुष्य का शरीर ही अनेक बार मिला है, ऐसा नहीं समझना। शरीर अनेक हुए हैं और वो अनेक भी अनेक प्रकार के शरीर मिले हैं। पुराणों ने जो वर्णन किया है 84 लाख योनि, तो सभी मिले हैं, उस आत्मा को जीवात्मा को मिला है। और अभी ये शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, इसके बाद फिर न जाने कौन सा मिलेगा, ये हम नहीं कह पाएंगे, न हम कह पाएंगे, न उपनिषद कह पाएंगे, न आप कह पाओगे। फिर दूसरा मिलने का कारण क्या है? संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहीर ग्रासांब वृष्ट्या चात्म विवृत्ति जन्म कर्मानुगान अनुक्रमेण देही स्थाने स्वरूपान्य विषम प्रबद्यते, उसका कारण बता रहे हैं। जन्मांतर और योन्यांतर की प्राप्ति में कर्म हेतु है। अब प्रश्न ये रहा कि कौन से कर्म से कौन से योनि की प्राप्ति होती है, ये कर्म के भेद में कारण क्या है? जन्म भेद में कर्म हेतु हुआ तो कर्म भेद में कारण क्या है, ये पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह, ये पहले तो कर्म में कारण बता रहे हैं। इन चार हेतु से कर्म होता है। साधारण कर्म के कारण और असाधारण कर्म के कारण, कर्म होने में जो कारण है वह साधारण और असाधारण करके दो भागों में बांटा है। साधारण कर्म का कारण यह है कि अधिष्ठान कर्ता प्राण चिदाभास अधिदैव, ये सब पांच हेतु हैं कर्म में। लेकिन ये पांच हेतु स्वाशुभ कर्म के हेतु हैं, नैयम वा विपरीतम वा, हमने संकेत किया पहले भी। कोई भी कर्म करने का मूल कारण है स्थूल शरीर, आपका वर्तमान शरीर, शरीर के अंदर अहम रूप में प्रतीत होने वाला चिदाभास चैतन्य का आभास, और शरीर के अंदर कर्म के साधन के रूप में विद्यमान अंतःकरण बहिर्करण इंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां, और इंद्रियों को परिचालन करने वाला प्राण, साथ ही इंद्रियों का उपकारक अधिदैव, ये सब मिलकर कर्म होते हैं, ये बताया। लेकिन इससे भी और सूक्ष्म कारण है। संकल्पना स्थूल शरीर इंद्रिय मन प्राण और अधिदैव, इन पांच के द्वारा कर्म तब होगा जब तुम्हारे हृदय में कर्म की वासना संकल्प उठेगा। संकल्पनात् सबसे पहले तो संकल्प उठेगा मन में, और संकल्प के अनुसार स्पर्शन, क्योंकि कोई भी कर्म करोगे तो कर्म के लिए कर्म साधन और कर्म उपादान कारण का ग्रहण होगा, और कर्म उपादान कारण का ग्रहण नहीं करोगे तो कर्म कैसे संकल्प, संकल्प मात्र से कर्म नहीं होगा, ये बात अलग है कि कुछ सृष्टि संकल्प मात्र से होती है, लेकिन वो संकल्प आपका नहीं है, हमारा नहीं है, वो ईश्वर का है। और यहां प्रसंग आप हमारे यानी जीवात्मा का चल रहा है, इसलिए जीवात्मा संकल्प से कर्म नहीं करता, संकल्प से कार्यों को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प करेगा तब संकल्प के अनुरूप वह साधन को ग्रहण करेगा, उसको कहते हैं स्पर्शन, साधन को छूना, साधन को पकड़ना। संकल्पन स्पर्शन, और स्पर्शन करने से पहले उसको देखना पड़ेगा। आप हाथ से जिसको पकड़ना चाह रहे हो उस पकड़ने के पहले तो मैं उसको पकड़ूं ये इच्छा होगी, उसके बाद उसको आप देखोगे तब जाकर उसको पकड़ोगे, और तब होता क्या है, ये तीन घटना घटने के बाद सोचकर देखकर और छूने पर क्या घटना घटती है, अंतकरण में मोह पैदा होता है। मोह शब्द का अर्थ होता है इच्छा, वासना, उस वस्तु के प्रति लगाव, आसक्ति, कर्म, कर्म फल के प्रति आसक्ति, अदृष्ट कर्म फल के प्रति आसक्ति। यहां मोह शब्द का अर्थ दृष्ट कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि अभी तो कर्म हुआ ही नहीं है। तब फिर ये मोह किसको कहा, तो अदृष्ट कर्म फल के प्रति आसक्ति। कई बार देखे हुए वस्तु के प्रति भोगने की इच्छा जगती है, कई बार वस्तु दिख तो नहीं रही है, परोक्ष है, लेकिन उसको सुना और सुनते ही उसको भोगने की इच्छा जग जाएगी, इसी को अदृष्ट कर्म फल के प्रति मोह कहा जाता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहेर ग्रासाम वृष्टिया चात्म विवृद्धि जन्म। जैसे शरीर आपका स्थूल शरीर अन्न और पानी से बढ़ता है, कि सभी का शरीर अन्न पानी से बढ़ता है, इसीलिए यहां पानी को तो सामान्य रूप में अंबु कह दिया गया है, लेकिन अन्न की जगह यहां ग्रास शब्द का प्रयोग कर दिया है। ग्रास शब्द का अर्थ होता है घास, घास और पानी, और वास्तव में हम जो खा रहे हैं वो तो घास ही तो खा रहे हैं, घास के अलावा और क्या खाते हैं। संस्कृत में ग्रास घास को कहते हैं, और घास को दूसरे शब्द कह दिया गया है सस्य, सस्य भी घास का नाम है। यमराज के सामने नचिकेता ने, माने नचिकेता ने इस बात का प्रयोग किया है अपने पिता उद्दालक के सामने, सस्यमीव मर्त्य पच्यते सस्यमीवा जायते पुनः, दृष्टांत दिया है। संसार में जीवात्मा कैसे मरते हैं और कैसे पैदा होते हैं। बरसात में जब जोर से बरसात होती है, दो चार दिन दस दिन लगातार बरसात हो जाने के बाद उस मिट्टी में, जमीन में पड़े हुए तमाम जितने भी घास के बीज हैं उनमें स्वतः अपने आप अंकुर आ जाते हैं, और पूरे धरती हरी भरी हो जाती है, हरा हो जाता है धरती। और कुछ दिन के बाद जब बरसात बंद हो जाता है, पानी नहीं मिलता धरती को, वही घास धीरे धीरे सूखकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन घास सूखकर नष्ट हो गया इसका मतलब है कि उस धरती में अब घास का कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं समझना। फिर जब दूसरे साल बारिश होगी तो फिर वहीं से और ग्रास उत्पन्न होते हैं। इसी तरह ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर चला गया तो वह स्वरूपता नष्ट हो गया, ऐसा नहीं समझना। वो घासों की तरह फिर कालांतर में, जैसे वृष्टि के माध्यम से वो घास उत्पन्न होते हैं, उसी तरह शुभ अशुभ कर्म के माध्यम से जीव देहांतर को प्राप्त होकर फिर पैदा होते हैं। जीवात्मा के लिए ही बार बार देह प्राप्ति, बार बार देह वियोग, मृत्यु और जन्म का जो प्रसंग है उसके प्रति यह संकेत किया। इसलिए किसी हिंदी कवि ने कहा कविता में, जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सब यही हैं पर कपड़े बदल बदल के। मर के कोई जाते नहीं है, या ज्ञानी है कहते हैं कि मर के चला गया, चला गया था लेकिन फिर आ गया, लेकिन उसको पहचान लो तो क्योंकि उसने कपड़ा बदल कर आया इसलिए नहीं पहने। हमारी समस्या है, हमारा आदमी दोबारे नहीं आया इसलिए हमारी समस्या नहीं है, आ तो रहा है वो। हमारी समस्या है कि जो आया हुआ है वो पहले वाले के रूप में नहीं पहचानते हैं, यही समस्या है। न पहचानने से बड़ी समस्या होती है बाबा। कभी कभी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो बुलाते हैं प्रमुख अतिथि के रूप में, अति विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, सीधे चले जाओ, दो चार साधु और होते हैं तो कोई किसी को नहीं जानता कौन है, जो जानता है तो जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते। तब जब कोई कह देता है कि ये स्वामी जी आज के प्रमुख अतिथि हैं, तब अच्छा अच्छा स्वामी जी है, हम तो पहचानते नहीं थे, नाम से तो हम परिचित थे लेकिन स्वामी जी से हम परिचित नहीं, आज परिचय मिल गया। न जानने से भी बड़ी समस्या होती है और कई बार न जानना ही अच्छा रहता है, जान गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है, कई बार जान गए गड़बड़ हो जाता है, कई बार न जानो तो अच्छा है। जैसे तुलसीदास जी ने सर्प को सर्प के रूप में नहीं जाना, बड़ा काम बन गया, कहानी सुनी है ना आपने, तुलसीदास जी गए, अपनी पत्नी कहां मायके चली गई, तो वो इतनी आसक्ति थी कि वो पत्नी के बिना रह ही नहीं सकते थे। जब उनको पता चला कि पत्नी मायके गई है, रात का समय था, बड़े जोर से बारिश हो रही थी, चल पड़े तो नदी बड़ा हुआ, बहुत विशाल पानी, नदी में पानी था, रुक गए अब कैसे जाएं, और इतने में एक मरा हुआ मुर्दा सड़ा हुआ लाश बहते हुए आ रहा था, उसको उनको लगा उसको लाश को लाश के रूप में नहीं जाना। उन्होंने सोचा कि यह लकड़ी है, काष्ठ है, लकड़ी है, लकड़ी को पकड़ लो, क्योंकि लकड़ी डूबती नहीं है इसीलिए लकड़ी को पकड़ लो। तो चले गए तो वो लाश इतना सड़ा हुआ था कि उनके पकड़ते ही फूट गया, सारे शरीर में गंदगी और दुर्गंधी चिपक गया, उनको उसका भान ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका चित्त कहीं अन्यत्र है इसलिए उसका भान नहीं होगा। और आगे गए कि उस पत्नी जहां सो रही थी, सब दरवाजा बंद, बारिश हो रहा था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कैसे अंदर जाए, तो उनको पता चला कि ऊपर से छत खुला हुआ है, तो ऊपर से छत में से अंदर जाया जा सकता है, ये बुद्धि तो काम कर रही थी लेकिन ऊपर चढ़े कैसे। इतने में कहते हैं कि एक सर्प चूहे को पकड़ रहा था और उसके जो आधे से ज्यादा हिस्सा तो छत में से नीचे लटक रहा था। उन्होंने कहा कि ये उपाय मिल गया, रस्सी लटकी हुई है इसी पर पकड़ लो और ऊपर चढ़ जाओ और घुस जाओ अंदर। पकड़ गए, चढ़ गए, अंदर घुस गए, घुस भी गए। तो आगे की घटना जो हो गई है वो आप लोग सब जानते हैं, वही उसके लिए तुलसीदास बनाने में हेतु बन गया, संत बनाने में कारण बना वो घटना, वो अप्रिय सत्य वाक्य। तुलसीदास कभी भी अपेक्षा नहीं रखे थे कि मेरी पत्नी और मेरे लिए ऐसा शब्द प्रयोग करे, आपके सामने भी कई बार ऐसा होता है, आप भी अपेक्षा नहीं रखते हो लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो जाता है तो आप दुखी होने लग जाते हो। तुलसीदास जी को भी बड़ा दुख हुआ, परंतु वो सत्य था इसीलिए वो काम आ गया।